जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर सतहिस् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय की जय श्री श्री गौरनिताय की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत् नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंध आठवां अध्याय महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 21। सिर्फ हिंदी या हिंदी कन्नड़ का अनुवाद भी करना है? ओनली हिंदी तो कैसे कर माइक। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमः नमः नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नंदनाय च, नंद गोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, गोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः, कृष्णाय वासुदेवाय, कीनंदनाय च, गोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। माताजी, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय, भगवान को, वासुदेवाय, वसुदेव के पुत्र को, देवकी नंदनाय, देवकी के पुत्र को, च तथा नंद गोप, नंद तथा ग्वालों के, कुमाराय पुत्र को, गोविंदाय भगवान को, जो इंद्रियों तथा गवों के प्राण है, नमः, सादर नमस्कार, नमः, नमस्कार। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद, अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद के लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गवों तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। तात्पर्य, किसी भी भौतिक संपदा द्वारा प्राप्त न किए जा सकने वाले भगवान इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने तथा आसुरी लोगों के उपद्रवों का शमन करने के लिए अपनी असीम अहेतुकी कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। ट्रांसलेशन विल डू। sentence by sentence you can do. So you read from Kannada Bhagavatam. Whatever मैं जो भी पढ़ता हूँ वो कन्नड़ा पढ़ लेना.
हरे कृष्ण. अनुवाद. वसुदेव सुतनाद देवकीय नंदन वृंदावन इतर गोवळिगळ कुवरनाद गोवुगळु मत्तु इंद्रियगळ चेतो हारियाद आ भगवंतनिगे ನನ್ನ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಮಹಾರಾಣಿ ಕುಂತಿ ಅನ್ಯ ಸಭಿ ಅವತಾರೋ ಕಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಅವತರಣ ಕಿ ವಿಶೇಷ ರೂಪ ಸೆ ಪೂಜಾ ಕರ್ತಿ ಹೈ ಕ್ಯೂಂಕಿ ವೆ ಇಸಿ ರೂಪ ಮೇ ಸರಳತಾ ಸೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕಿಯೇ ಜಾ ಸಕ್ತೆ ಹೈ.
ಐಹಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೂರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ತಲೆ ಎತ್ತುವಿಕೆಯನ್ನು ಕ್ಷೀಣಿಸಲು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ದಯವನ್ನು ತೋರಲು ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಪರಿಮಿತ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಜ ಕರುಣೆಯಟ್ಟು ಭಗವಂತನು ತಾನು ಇರುವಂತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಅವತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ರಾಣಿ ಕುಂತಿಯು ಇತರ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಧರಿಸಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಈ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮೀಪವರ್ತಿ ಎಂಬುದೇ ಆಗಿದೆ.
We have gone ahead one sentence. Ram avatar mein ve bachpan se hi raja ke putra bane rahe, lekin Krishna avatar mein raja ke putra hote hue bhi unhone apne asli mata pita raja rani dev जन्मते ही त्याग दिया और यशोदा माई की गोद में चले गए, जिससे उनकी बाल लीलाओं का अभिनय कर सके. तैव भगवान कृष्ण भगवान राम की अपेक्षा अधिक दयालु है.
ರಾಮ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ರಾಜಪುತ್ರನಾಗಿಯೇ ಉಳಿದು ಬಿಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಪುತ್ರನಾಗಿಯೂ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ತೊರೆದು ರಾಜ ವಸುದೇವ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ದೇವಕಿ ಯಶೋದ ತಾಯಿಯು ತೊಡೆಯನ್ನೇರಿದನು.
देव गोस्वामी को जरूर जब उन्होंने भाग अभी हम लोग कलयुग में रहते हैं तो ती के भाई वसुदेव तथा उनके परिवार के प्रति विशेष रूप से अत्यंत दयालु थे. यदि कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में जन्म न लिए होते तो महारानी कुंती उन्हें अपना भतीजा मानकर इतने वात्सल्य भाव से उन्हें संबोधित न कर पाती.
कुंतिय सहोदरनाद वसुदेव मत्तु अवन कुटुंबदवर बग्गे अवनु निसंदेहवागियू तुम्बा करुणामयागिद्दनु. अवनु वसुदेव मत्तु देवकियर मगनागिद्दरे रानी कुंतियु अवनन्नु तन्न सहोदरनेंदु ವಾರಸುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಕಿಂತು ಅಧಿಕ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ತು ನಂದ ಔರ್ ಯಶೋದಾ ಹೈ ಜಿನ್ಹೋನೆ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಬಾಲ ಲೀಲಾಓಂ ಕಾ ರಸ ಲೂಟಾ ಜೋ ಅನ್ಯ ಲೀಲಾಓಂ ಸೆ ಅಧಿಕ ಮನೋಹಾರಿ ಹೈ.
ನಂದ ಮತ್ತು ಯಶೋದೆಯರು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಅವರು ಅವನ ಬಾಲ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿದರು.
ವ್ರಜಭೂಮಿ ವೃಂದಾವನ್ ಮೇ ಪ್ರದರ್ಶಿತ ಕೀ ಗೈ ಉನ್ಕಿ ಬಾಲ ಲೀಲಾಓಂ ಕೆ ಸಮಾನ ಅನ್ಯ ಕುಛ್ ನಹಿ ಹೈ ಜೋ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಧಾಮ್ ಕೆ ನಾಮ್ ಸೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಾ ಮೇ ವರ್ಣಿತ ಮೂಲ ಕೃಷ್ಣ ಲೋಕ ಮೇ हो रही उनकी सनातन लीलाओं का एक नमूना है।
व्रजभूमियल्ली अवनु तोरिद बाल लीलेगळिगे समानवादवु बेरावु इल्ल। ಈ ಬಾಲ ಲೀಲೆಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಧಾಮ ಎಂದು ವರ್ಣಿತವಾಗಿರುವ ಮೂಲ ಕೃಷ್ಣ ಲೋಕದಲ್ಲಿನ ಅವನ ನಿತ್ಯ ಲೀಲೆಗಳ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿವೆ।
ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವ್ರಜಭೂಮಿ ಮೇ ಅಪ್ನೆ ದಿವ್ಯ ಪಾರ್ಷದೋ ತಥಾ ರಾಜ ಸಾಮಗ್ರಿ ಕೆ ಸಾತ್ ಸ್ವಯಂ ಅವತರಿತ ಹುವೆ ಥೇ।
ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನೆಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ರಜಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದನು।
ऐसे करते हैं, मैं बाकी पढ़ लेता हूं, उसके बाद यू रीड द रिमेनिंग। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि व्रज भूमि के वासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है, और उनमें भी गोपियां विशेष रूप से भाग्यशाली हैं, भाग्यशालिनी हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वे नंद तथा यशोदा के साथ ग्वालों के साथ तथा विशेष रूप से ग्वाल बालों एवं गवों के साथ अपनी लीलाओं के कारण गोविंद कहलाए। गोविंद रूप में भगवान ब्राह्मणों तथा गवों के प्रति विशेष सदय हैं, जिसका अर्थ है कि मानवीय संपन्नता बहुत कुछ इन्हीं दो बातों पर निर्भर करती है। एक तो ब्राह्मण संस्कृति तथा दूसरी गोरक्षा। जहां इन दोनों का अभाव रहता है, वहां भगवान कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होते हैं।
ಆದ್ದರಿಂದಲೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ರಜಭೂಮಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳಂತಹ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಬೇರಾರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ಗೋಪಿಯರು ತುಂಬಾ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳೆಂದು ಅವರ ಅಭಿಮತ। ನಂದ ಮತ್ತು ಯಶೋಧೆಯರೊಂದಿಗಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೋಪಬಾಲರೊಂದಿಗಿನ ಮತ್ತು ಗೋವುಗಳೊಂದಿಗಿನ ಲೀಲೆಗಳು ಅವನನ್ನು ಗೋವಿಂದನೆಂದು ಕರೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ। ಗೋವಿಂದನಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತು ಗೋವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾನೆ। ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಗೋರಕ್ಷಣೆ, ಈ ಎರಡರ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಪ್ರಗತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ। ಈ ಎರಡರ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಎಂದೂ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ। ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ। ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಶ್ರೀಯುತಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರುನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀ ರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾಂ ಸಹಗಣಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ। ನಮೋ ಓಂ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೆ। ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೇ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ತಾರಿಣೆ ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ। ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कारवार में कई वर्षों के बाद आ रहा हूँ। कितने साल से, 2-3 साल हुए, 3 साल के बाद आप सबके बीच में आ रहा हूँ। आप में से अनेक भक्तों को पहले मिल चुका हूँ, अनेक भक्तों को नहीं मिला हूँ, क्योंकि आप शायद मंदिर में पिछले 3 सालों में ही आए. Oh, I forgot you have to do.
हरे कृष्णा ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತನವರು. ಸೊ ಅವರು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ರು ಮಾರತ್ತಾಜಿ ಯಾರಾದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆಸಲಾಗ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಬ್ರು ಮಾತಾಜಿಗಳು ಆ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಯಾರು ಇದ್ದೀರಿ ಪ್ರಭುಗಳ ಸೈಡ್? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಮಾತಾಜಿಗಳು ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಬ್ರು ಯಾರು ಮಾತಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಿ.
ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಸಿಲೇ ಹಿಂದಿ ಮೇ ಬೋಲ್ನಾ ಹೈ.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸ್ವೇತಾ ಮಾತಾಜಿ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವರಿಗೆ? ಹಿಂದ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ.
ಉನ್ಕೊ ಅಸುವಿಧಾ ನಹಿ ಹೋಗಿ ನಾ. ಅನುವಾದ
ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಮ್ದು ಇವತ್ತು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇದೆ, ಪರಮಪೂಜ್ ಭಕ್ತಿರ ಸಮಂತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಇಲ್ಲಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ 2018 ರಥಯಾತ್ರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಸುಮಾರು ಜನ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಬಂದವರು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ. ಸೊ ಮಹಾರಾಜರು ಬೆಳಗಾಂ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವರಿಷ್ಠ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇಸ್ಕಾನ್ದಲ್ಲಿ. ಅನೇಕ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಂ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಗೋಕುಲ್ಧಾಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇದೆ, 400 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಆಕಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೆ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ನಾವು ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಹಾರಾಜರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಯುವಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಇವತ್ತು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರ ಮುಖಾರವಿಂದದಿಂದ ನಾವು ಅವರ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. Hare Krishna, this is better. Hare Krishna, yeah. Ye acha hai na jyada? Spasht hai. Hare Krishna, Hare Krishna. तो मैं बहुत सरल हिंदी में बात करूंगा और धीरे धीरे बात करूंगा ताकि जिनको हिंदी अच्छी तरह से नहीं आती है वो भी आसानी से समझ पाएंगे. आए तो तो कारवार में भक्तों की संख्या इतनी अच्छी तरह से बढ़ रही है और मंगल आरती में भी इतने आप में से भक्त आए, ये देखकर मुझे तो बहुत आनंद हुआ. कारवार में भक्ति के आंदोलन को आगे बढ़ने के लिए बहुत और कुछ आप सबको मिलकर करना है. वो दो ये जो श्लोक है आज का, ये कुंती महारानी ने अपनी प्रार्थना में कही, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय में बहुत प्रसिद्ध कृष्ण स्तुति है या कृष्ण के प्रति प्रार्थनाएं है। कुंती महारानी कौन है? पांडवों की माता, भगवान कृष्ण की परम भक्त हैं। और इन प्रार्थनाओं से हम समझ सकते हैं कि कुंती महारानी कितनी बड़ी भक्त है। तो भगवान के भक्ति के मार्ग में कोई भेद नहीं है, कोई नीचा कोई ऊंचा, कोई इस जाति का उस जाति का, इस भाषा का उस भाषा का, कोई शिक्षित अशिक्षित, पुरुष स्त्री, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भक्ति मार्ग में हर एक कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। कुंती महारानी के बारे में कभी ऐसे नहीं सुना गया है कि वो विश्वविद्यालय में गई, उन्होंने वहाँ जाकर बहुत सारे डिग्रियाँ प्राप्त कर ली, ऐसे नहीं सुनाई देता है। परंतु उनकी प्रार्थनाएं बड़े बड़े दार्शनिकों के लिए बहुत ही श्रवणीय विषय है। श्रवणीय अर्थात सुनने योग्य। बड़े बड़े विश्वविद्यालय के जो दार्शनिक हैं उन्हें भी ये पढ़ने चाहिए परम सत्य को समझने के लिए। तो जो व्यक्ति भक्त हो जाता है उसे संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। यहां कुंती महारानी श्री कृष्ण का संबोधन करती हैं, संबोधन अर्थात उनको बुलाती हैं। क्या कहती हैं? उनके विभिन्न नामों से उनको बुलाती हैं, कृष्णाय, कृष्ण के या कृष्ण को। आय जब होता है तो इस संबोध को होता है, कृष्ण कृष्णाय, श्री कृष्णाय नमः, अर्थात कृष्ण को हम नमन करते हैं। तो आय जब होता है तो यह को, हम कृष्ण को नमन करते हैं, कृष्णाय नमः। उसी प्रकार से कृष्णाय, वासुदेवाय, देवकी नंदनाय, इसका मतलब है कृष्ण को, वासुदेव को, देवकी नंदन को, नंद गोप कुमाराय, नंद गोप कुमार को, गोविंदाय, गोविंद को नमो नमः। नमो नमः मतलब हम नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। हम साधारण हमारे दिनचर्या में एक दूसरे को मिलते हम नमस्ते कहते हैं ना, नमस्कार, नमस्ते। तो ये क्या है? वास्तव में मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वैदिक सभ्यता में हम हाय हेलो नहीं कहते हैं, हम नमस्कार बोलते हैं, नमस्ते, या हाथ जोड़ के हरे कृष्णा। तो अलग अलग भागों में अलग अलग ऐसे संबोधन के या नमस्कार करने की विधियां होती है। तो ये नमो नमः, नमः ये बहुत महत्वपूर्ण है, विभिन्न श्लोकों में ये पाया जाएगा। तो कुंती महारानी ने भगवान का संबोधन कितने नामों से किया है? कृष्ण, वासुदेव, देवकी नंदन, नंद गोप कुमार और गोविंद। तो भगवान को उन्होंने यहां पे इस श्लोक में 5 नामों से पुकारा है। अभी ये बताइए, भगवान कृष्ण के या भगवान के कितने नाम हैं? अनंत नाम है, क्योंकि भगवान अनंत है। तो भगवान के संबंध में जो भी कुछ है वो अनंत है। भगवान के गुण कितने हैं? अनंत। भगवान के भक्त कितने हैं? अनंत। भगवान के धाम कितने हैं? अनंत। भगवान की लीलाएं कितनी हैं? अनंत। इस प्रकार से अनंत भगवान के से संबंधित जो भी कुछ है वो सब अनंत है। और भगवान को नाम किसने दिए है? हाँ, उनके भक्तों ने नाम दिए हैं। अच्छा, आपको नाम किसने दिया? आपको नाम किसने दिया? आपको, आपको डॉक्टर ने दिया? अरे अरे अरे, अच्छा आपको नाम किसने दिया? माता पिता ने दिया। आपको माता पिता ने दिया। तो हमें नाम हमारे माता पिता देते हैं। अब दो, तो अभी भगवान के माता पिता हैं क्या? भगवान कौन है जो सबके माता पिता है? पिताह मत्स्य जगतो माता धाता पितामहः। भगवत गीता में भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? मैं सबका पिता हूँ, सबका माता हूँ, सबकी माता मैं हूँ, सबकी पिता माँ दादा दादी नाना नानी सब मैं ही हूँ। माता पिता कौन है जो हमको जन्म देते हैं? सही है ना? तो भगवान कृष्ण के कारण हम सब उत्पन्न हुए हैं। अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण क्या है? अनादि है, उनका कोई कारण नहीं है, परंतु वो सबके आदि हैं, सब कोई उनसे उत्पन्न होते हैं। सर्व कारण कारणम, हमारे कारण है हमारे माता पिता, हमारे माता पिता के कारण है उनके माता पिता। ऐसे पीछे जाते जाइए जाइए, जितना पीछे हो सके जाइए, अंततः पूर्ण विराम कहाँ पे होगा? भगवान पे। तो भगवान वो है जो सबके माता पिता है, पूर्ण विराम वहीं होता है। कन्नड में पूर्ण विराम फुल स्टॉप को क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम बोलते हैं। तो भगवान से सब कुछ उत्पन्न होता है। तो भगवान की उत्पत्ति कहां से हुई? भगवान अपने ही उत्पत्ति है। कई बार लोग वाद करते हैं, जो नास्तिक लोग हैं, शायद आप भी मिले होंगे ऐसे नास्तिक लोगों से। आप मिले हैं कभी नास्तिक लोगों से जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं? वो कहते हैं हम नहीं मानते भगवान को। तो यदि आपसे पूछते हैं कि भगवान कौन है, तो भगवान हर चीज के उद्गम है, भगवान से सब कुछ उत्पन्न होता है। तो फिर वो प्रश्न करते हैं भगवान कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो क्या उत्तर देंगे आप? भगवान कहाँ से उत्पन्न होते हैं क्या उत्तर देंगे? हाँ, भगवान की कोई उत्पत्ति नहीं है, भगवान के कोई आश्रय नहीं है। हमारे आश्रय बहुत सारे हैं। अभी हम जमीन का आश्रय लिए हैं, जमीन के ऊपर बैठे हैं, हमने आश्रय लिया है ना? हम हवा में बैठ सकते हैं? नहीं, हमने भी आश्रय लिया है ना, जमीन का आश्रय लिया है। ये जमीन ने पृथ्वी का आश्रय लिया है, पृथ्वी ने किनका आश्रय लिया है? अनंत शेष, ये जितने भी लोक हैं, ग्रह हैं, ये ब्रह्मांड में वो घूम रहे हैं। भगवान ने हर एक लोक में प्रवेश करके उनको अपने अपने कक्षा में स्थित रखा है। भगवद गीता में क्या कहते हैं भगवान? गाम आविश्य च भूतानि धारण अहम ओजसा। वो कहते हैं मैं हर एक लोक में प्रवेश करता हूं और मेरी ओजस शक्ति से सारे लोकों को मैं धारण करता हूं। तो कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति भगवान की शक्ति के बिना स्थित नहीं हो सकता है। तो पृथ्वी भी भगवान की शक्ति पर निर्भर है। अनंत शेष जो कि भगवान के अवतार है उन्होंने पृथ्वी को धारण किया हुआ है। अनंत शेष कहाँ से उत्पन्न होते हैं? भगवान विष्णु से। भगवान अंततः से पीछे जाएं तो मूल कारण भगवान कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण हम सबके मूल आश्रय हैं। और भगवान श्री कृष्ण के आश्रय कौन है? स्व आश्रय आश्रय है। वो अपने ही आश्रय हैं, उनके लिए कोई अन्य आश्रय नहीं है। तो इस तरह से भगवान के कोई आश्रय नहीं है, उनके कोई माता उत्पत्ति उनकी कहीं से नहीं होती है, तो फिर उनके माता पिता कैसे हो सकते हैं? उनको किसने नाम दिया? हमें नाम वो लोग देते हैं जिनका जन्म हमसे पहले हुआ है ना, बराबर। लेकिन भगवान कृष्ण से पहले कुछ है ही नहीं, तो उनके माता कहाँ से हो सकते हैं, उनके पिता कहाँ से हो सकते हैं, उनके वरिष्ठ कौन हो सकते हैं, तो कौन उनको नाम दे सकते हैं? तो ये है तत्व, दर्शन, फिलॉसफी। परंतु और एक बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको कहते हैं लीला। लीला, तत्व और लीला, ये दो शब्द याद रखिए। कौन से शब्द? तत्व, लीला। तत्व का अर्थ क्या है? तत्व जो सत्य है, जो दार्शनिक सत्य है। ठीक है, बहुत मुश्किल है कि सीधा है? समझ रहे हैं? दार्शनिक सत्य उसको तत्व बोलते हैं। और लीला क्या है? खेल, खेलना। जैसे एक राजा है, राजा सारे देश का स्वामी है, जितने भी प्रजा है वो सब राजा को मानते हैं, राजा के हर एक वचन को मानते हैं। हम पुराने काल के राजतंत्र की बात करते हैं, आजकल की बात नहीं। तो राजा जो चाहे वो कर सकता था। तो इस प्रकार से राजा है और प्रजा है, तो राजा की बातों को प्रजा मानती है। तो इस तरह से आगे जब भगवान के राज्य में जितनी सारी प्रजा है उनकी बात हम सब मानते हैं, उनके आदेश के अनुसार हम चल रहे हैं, तो भगवान के आदेश के अनुसार सारी सृष्टि चलती है। तो उनका उनको आदेश देने वाले कौन है? कोई नहीं है। तो ये है सत्य। परंतु वही राजा अपने कमरों में अपने पोते को अपने कंधे पे पीठ पे बिठा के वो घोड़ा बन जाते हैं, और उनका पोता जो है वो उनको बोलता है चलो घोड़ा चलो, और राजा को बड़ा आनंद आता है इसमें, और उसका पोता उसके साथ कुश्ती करता है और राजा हार जाते हैं। वही राजा जो युद्ध भूमि में इतने शूरवीर होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, अनेक योद्धाओं को हरा सकते हैं, परंतु अपने छोटे से पोते के सामने हार जाते हैं। तो एक है तत्व, जो राजा एकदम शक्तिमान है, बहुत शूरवीर है, यह है तत्व, सबको हरा देते हैं। परंतु लीला क्या है? वो अपने पोते के सामने हार जाते हैं। उसी तरह से भगवान, भगवान का तत्व क्या है? वो सब चीजों के उद्गम है। भगवत गीता में भगवान बार बार इसी चीज को बोलते हैं। कोई श्लोक आप बता सकते हैं? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुध भाव समन्विताः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह संपूर्ण भौतिक सृष्टि, आध्यात्मिक सृष्टि मुझसे ही उत्पन्न होती है। जो इस तत्व को भली भांति जान लेता है वो हृदय पूर्वक मेरी भक्ति करता है, मेरी सेवा करता है। तो ये है भगवान का तत्व कि भगवान से सब कुछ उत्पन्न होता है, परंतु वही भगवान जब लीला करते हैं तो अपने आप को एक ग्वाल बाल समझते हैं। आपका कोई पेशा है, आप कोई नौकरी व्यापार करते होंगे ना, तो आप क्या करते हैं? बैंक में आप काम करते हैं, तो आपका पेशा है बैंक की नौकरी करना, सही? तो हर एक है, आप क्या करते हो? छात्रा है ना, स्कूल में पढ़ती ना, स्कूल में, तो इनका पेशा वो छात्रा है, स्कूल में पढ़ती है। तो इस तरह से यहां सबका पेशा है, तो भगवान का नहीं होना चाहिए क्या? भगवान का क्या काम है, भगवान का क्या व्यवसाय है? आप व्यवसाय करते हैं ना अशोक जी, व्यवसाय करते हैं, तो भगवान के भी कोई व्यवसाय होना चाहिए कि नहीं? आपका व्यवसाय है तो भगवान का क्यों नहीं होना चाहिए? तो भगवान का भी व्यवसाय है, उनका व्यवसाय क्या है? गोरक्षा, गायों को चराते हैं, यह है उनकी लीला। तत्व में भगवान कौन है? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे उत्पन्न होता है। परंतु जब भगवान खेलना चाहते हैं, लीला करना चाहते हैं, तो फिर क्या है, वो एक ग्वाल बाल बन जाते हैं, गोप गोप कुमार ग्वाल बाल बन के गायों को चराते हैं, ये उनकी लीला है। और नित्य रूप से यही लीला करते हैं भगवान। भगवान उनके गोलोक वृंदावन धाम में प्रतिदिन प्रातः काल घर से निकलते हैं, गायों को साथ में ले जाते हैं, चराते हैं व्रज भूमि वृंदावन के विभिन्न वनों में, और फिर सायंकाल में शाम को लौट के आते हैं। भगवान के धाम में भी यही लीला चलती है। इस प्रकार से भगवान का तत्व है, भगवान की लीलाएं हैं। इन दो शब्दों को आप अच्छी तरह से जान लीजिए। कौन से दो शब्द? फिर से, तत्व लीला। तत्व में भगवान कौन है? सर्वशक्तिमान, सब चीजों की उत्पत्ति, सबको दंड देने वाले, हर चीज का निर्धारण करने वाले, हर चीज की सृष्टि सृजन पालन जिनके हाथ में है वो है भगवान। तत्व है। और भगवान की लीला क्या है? जब वो ग्वाल बाल बनते हैं और गायों को चराते हैं, और फिर वो अपने आप को पुत्र समझते हैं, बच्चा समझते हैं, तो बच्चा समझते हैं तो उनके माता पिता होने चाहिए, परंतु तत्व की दृष्टि से उनके कोई माता पिता नहीं है, वही सबके माता पिता है। तो अच्छी विडंबना है। तो भगवान सोचते हैं क्या करना चाहिए, तो वो सोचते हैं मेरे खास जो भक्त हैं उनको मैं माता पिता बनाऊंगा, और उनके प्रति मैं उन बच्चा बन जाऊंगा, और ऐसे उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करूंगा, तो मैं उनका बच्चा वो मेरे माता पिता। इस तरह से ऐसे उनके कोई विशेष जो भक्त होते हैं, जो भगवान को उस वात्सल्य भाव से प्रेम करना चाहते हैं, भगवान ऐसे भक्तों को उनके माता पिता बनाते हैं। तो ये है उनकी लीला। तो जब उनकी लीला में भगवान प्रकट होते हैं भौतिक सृष्टि में, जैसे कि वो 5000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए, तो उनके माता पिता थे, कौन थे? देवकी और वसुदेव। वासुदेव नहीं, भगवान कृष्ण है वासुदेव, उनके पिता है वसुदेव। व और वा, पिता कौन है? वसुदेव। पुत्र कौन है? वासुदेव। तो वसुदेव और देवकी ये उनके माता पिता बने, उनसे जन्म लिए। परंतु जन्म लेने के तुरंत बाद क्या हुआ? कंस के डर से वसुदेव ने कृष्ण को अपने सर पे रखा और चमत्कार हुआ, उनकी जो बेड़ियां थी हाथ में वो खुल गई, जो जेल के दरवाजे थे वो खुल गए और वसुदेव अपने पुत्र को लेकर यमुना पार करके गोकुल में आए, जहां नंद महाराज और माता यशोदा रहती थी, और वहां पे रख दिया बाल कृष्ण को। और वहां माता यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया था, तो उस पुत्री को उठाकर लेकर आए वापस। और जब वापस अपने जेल के अंदर चले आए तो दरवाजे बंद हो गए, और फिर कंस को पता चला कि एक बच्चे का जन्म हुआ है। तो कंस आए और देखा कि अरे ये तो बच्ची है, बच्चा नहीं है, पुत्री है, पुत्र नहीं है। फिर भी मारने का प्रयास किया। वो बच्ची कौन थी? योग माया थी। वो कंस के हाथ से निकल के आसमान में चले गई और कहने लगी, हे दुष्ट कंस, जिस बच्चे को तुम मारना चाहते थे वो दूसरी जगह में जन्म ले चुका है और तुम्हारी हत्या का कारण बनेगा। तो वहां कृष्ण ने, भगवान ने जन्म ले लिया, जन्म लेके वो वहां पर गए। अभी यशोदा माता और नंद महाराज उनके माता पिता बन गए। और इस तरह से श्री कृष्ण ने वात्सल्य भाव का आस्वादन किया वृंदावन में, गोकुल में, माता यशोदा और नंद महाराज के साथ। फिर नामकरण संस्कार हुआ, माता पिता ही करते हैं ना नामकरण संस्कार। तो वो भगवान जिनका कोई नाम नहीं है, वो भगवान जो सबके माता पिता हैं, अभी उनके भक्तों के पुत्र बन गए। इसलिए उनके भक्तों ने उनको बहुत सारे नाम दे दिए, अनंत नाम दे दिए हैं। तो जितने भी नाम भगवान के हैं, वो सारे के सारे नाम उनके भक्तों ने उनको दी है। इस प्रकार से नामकरण के समय कौन से नाम लगे भगवान कृष्ण भगवान को, कौन से नाम आपने पढ़ा है ना कृष्ण लीला? बोलिए, कृष्ण के कौन से नाम लगे? हाँ, कृष्णा और गोविंदा, केशव, ऐसे बहुत सारे नाम। परंतु नामकरण के संस्कार में कृष्ण नाम रखा गया ना, तो कृष्ण, तो कृष्णाय। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? सांवला, जो सांवले रंग के होते हैं वो कृष्ण। इसलिए स्त्रीलिंग जो है, इसलिए यमुना, द्रौपदी, उनका नाम है कृष्णा दीर्घ, और कृष्ण ये पुलिंग है, ये भगवान कृष्ण का संबोधन है। तो उनका नाम रखा गया कृष्ण। परंतु कृष्ण का अर्थ क्या है? कृषिर भूवाचक शब्द नश्च निर्वृति वाचक तयोर ऐक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते। तो कृष्ण शब्द के दो अक्षर हैं, कृष और ण। कृष्ण मतलब क्या है? सर्व आकर्षक, आकर्षण से कृष, कृष और आकर्षण। और ण का मतलब है दिव्य आनंद। तो कृष और ण, इन दो अक्षरों को जोड़ के क्या होता है? जो सर्व आकर्षक दिव्य आनंद की मूर्ति है वो है कृष्ण, जो परम सत्य है, भगवान है। तो भगवान कृष्ण कौन है? परम आनंद, सर्व आकर्षक, ये है भगवान कृष्ण। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण ये भगवान का सबसे महत्वपूर्ण नाम है। भगवान के अनंत नामों में से ये कृष्ण सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मधुर नाम है। क्योंकि कृष्ण शब्द से हम जान सकते हैं कि भगवान सर्व आकर्षक है और दिव्य आनंद की मूर्ति है, और हमें भी वो आकर्षित करते हैं और दिव्य आनंद प्रदान करते हैं। और फिर वासुदेवाय, तो वासुदेव, तो कृष्ण का नाम वासुदेव क्यों रखा गया? क्योंकि वो वसुदेव के पुत्र हैं, इसलिए वासुदेव, वसुदेव वासुदेव। कुंती कौंतेय, कौन है कौंतेय? अर्जुन या कुंती के पुत्र। तो उसी प्रकार से वसुदेव के पुत्र हुए वासुदेव। और देवकी नंदन, उनका नाम नंदन, नंदन अर्थात क्या है? नंद, आनंद प्रदान करने वाले को नंद नंदन कहते हैं, या नंदिनी बच्ची हो तो साधारणतः पुत्र को नंदन बताया जाता है, पुत्री को नंदिनी। जैसे श्रीमती राधा रानी का नाम है वृषभानु नंदिनी, वृषभानु महाराज को आनंद प्रदान करने वाली, उसी प्रकार से देवकी नंदन कृष्ण भगवान है, यशोदा नंदन, नंद नंदन, वसुदेव नंदन। तो इस प्रकार से नंदन है जो आनंद प्रदान करते हैं, जो पुत्र हैं। तो देवकी नंदनाय च, तो कुंती महारानी स्वीकार करती हैं कि कृष्ण भगवान जो उनके भतीजे हैं वो वास्तव में देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। वसुदेव और कुंती महारानी के बीच में संबंध क्या है? वसुदेव कुंती के भाई है, अर्थात उनके भतीजे, कृष्ण कुंती महारानी के भतीजे हैं। तो इस प्रकार से देवकी नंदन। परंतु देवकी कहां रहती हैं? मथुरा में, और कृष्ण कहां रहे? वृंदावन में। तो वृंदावन में कृष्ण ने क्या किया? नंद गोप कुमार, तो वो नंद महाराज और जो वहां के गोपगण हैं उनके कुमार हैं, उनके पुत्र तुल्य हैं। तो अभी उनके वृंदावन लीला में आए हैं। पहले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय, अभी उनके मथुरा लीलाओं के नाम हैं वासुदेव देवकी नंदन, और अभी वृंदावन लीला में कुंती महारानी जा रही हैं। नंद गोप कुमाराय, कि नंद महाराज के वो पुत्र हैं, कुमार हैं वो, और क्या करते हैं? गोविंदाय, गोविंद, गोविंद अर्थात जैसे प्रभुपाद जी समझाते हैं गायों को आनंद प्रदान करने वाले, इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाले। तो भगवान कृष्ण का पेशा है गायों को चराना, जिसके लिए उनका नाम बनता है गोविंद या गोपाल, गौओं का पालन करना। तो नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान कृष्ण जब मथुरा से वृंदावन आए तो वृंदावन में उन्होंने बहुत सारी ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं किए जो कि वो मथुरा में भी नहीं करते थे। वृंदावन के बाद जब वो मथुरा गए और भगवान कृष्ण और बलराम ने कंस का वध किया, कंस के साथ साथ उनके अन्य पार्श्व, उनके जो साथी थे जैसे चाणूर मुष्टिक, बड़े बड़े पहलवान थे, उनका भी वध कर दिया। तो जब वो वसुदेव और देवकी के सामने आए तो देवकी और वसुदेव जो कि उनके माता पिता थे, उनको अचानक हृदय में क्या हुआ? जब कृष्ण को देखा सामने तो वसुदेव देवकी कहने लगे, अरे ये तो भगवान है, परम सत्य है, उन्होंने चाणूर मुष्टिक कंस आदि बड़े बड़े असुरों का वध किया है, ये हमारे बच्चे कैसे हो सकते हैं? नहीं 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 मेरे बच्चे नहीं, ये तो भगवान है, भगवान है। तब भगवान कृष्ण ने क्या सोचा? एन रे, नहीं, मैं आपका पुत्र हूं, आप मुझे भगवान क्यों मान रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे भगवान मत सोचो, मैं आपका पुत्र हूं, मुझे पुत्र की तरह प्रेम करो। तब फिर से भगवान कृष्ण ने वसुदेव और देवकी के ऊपर योग माया का पर्दा डाल दिया और फिर नंद बाबा और फिर वसुदेव और देवकी फिर से सोचने लगे, अरे ये तो हमारा पुत्र है, ये आलिंगन कर लिया। तो ऐसे लीला में आने के लिए भगवान की योग माया की आवश्यकता होती है। इसके पहले भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य का प्रदर्शन देखकर वसुदेव और देवकी भूल गए कि हम इनके माता पिता हैं, ये हमारे पुत्र हैं। वो लीला को छोड़कर तत्व में आ गए। आप समझ रहे हैं, लीला को छोड़कर तत्व में आ गए। परंतु भगवान तत्व नहीं चाहते हैं, भगवान लीला चाहते हैं। भगवान भगवान बनना पसंद नहीं करते हैं। समस्या ये है, इंसान भगवान बनना चाहता है, तो जो भगवान है वो भगवान नहीं बनना चाहते, जो भगवान नहीं है वो भगवान बनना चाहते। देखिए कितनी विडंबना है। कौन सी बात बताई अब हमने? हाँ, भगवान भगवान नहीं बनना चाहते, वो लीला करना चाहते हैं। और हाँ, जो भगवान नहीं है, जो इंसान है, वो भगवान बनना चाहते हैं। ये समस्या है, क्या करें? तो भगवान बोलते हैं, मुझे भगवान भगवान नहीं बनना है, मुझे ग्वाल बाल बनना है, मुझे गायों को चराना है, मुझे माता यशोदा नंद बाबा का प्रेम लेना है, वो मुझे लाड प्यार करते हैं, मुझे वो अच्छा लगता है। क्योंकि भगवान के पास जब अधिकांश लोग जाते हैं ना, तो क्यों जाते हैं? देही देही देही। आप बाजार में जाते हैं ना खरीदने के लिए सामान, तो उस समय आप लिस्ट बना के जाते हैं कि क्या क्या खरीदना है। हमको सब्जी खरीदना है, गेहूं खरीदना है, शक्कर खरीदना है, घर के लिए साबुन खरीदना है, टूथपेस्ट खरीदना है, सब लेकर जाते हैं ना लिस्ट। उसी तरह से साधारणतः जब लोग भगवान के सामने जाते हैं मंदिर में, लिस्ट लेके जाते हैं, भगवान मुझे ये दीजिए, मुझे ये दीजिए, मुझे ये दीजिए, तो भगवान कहते हैं, नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। सब लोग मेरे पास आते हैं मांगने के लिए, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं बच्चा बनूंगा और मेरे माता पिता के जाके बोलूंगा, मुझे दो मुझे दो मुझे दो। ये लीला है। तो तत्व में रहने से भगवान को अच्छा नहीं लगता। कन्नड़ में बोलते हैं ना, बेजार बेजार आ गया, मुझे लीला अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं लीला करूंगा और मेरे शुद्ध भक्तों को मैं माता पिता बना दूंगा और उनसे फिर मांगूंगा, मुझे मक्खन चाहिए, मुझे दूध चाहिए, मुझे भोजन चाहिए, फिर माता पिता मुझे लाड प्यार करेंगे। जब बादल गरजेंगे, बादल की गर्जना होगी, गड़गड़ गड़गड़ आवाज आएगा, डर के मैं माता के गोद में चले जाऊंगा और माता मेरी रक्षा करेगी। भगवान सबकी रक्षा करते हैं, यह तत्व है। परंतु लीला में भगवान चाहते हैं कि भक्त उनकी रक्षा करें, तो माता यशोदा के पास जाते हैं। अभी आप तत्व और लीला में और अंतर समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अब अपने लीला का आनंद लेते हैं और माता के पास आते हैं, अपने गायों को चराते हैं, और जब उनको कोई भगवान कह के संबोधित करता है उनको अच्छा नहीं लगता। जब भगवान कृष्ण गायों को लेकर जाते थे चराने के लिए, तो उस समय सारे देवता गण आते थे, आरती वगैरह उतारते थे, चामर मोर पंख गंध धूप इत्यादि सब आके अर्पण करते थे और सारे अन्य ग्वाल बाल सोचते थे ये सब कौन है, अरे कृष्ण देखो तुम्हारे आरती करने आए, मजाक उड़ाते थे कृष्ण का, देखो देखो कौन आए। और फिर वो जाके बोलते थे एक चतुर्मुखी एक व्यक्ति आए तेजस्वी, उन्होंने हमारे कन्हा कन्हैया की आरती उतारी। तो बड़े लोग सोचते थे छोटे बच्चे हैं बड़बड़ाते हैं, छोटे बच्चे बड़बड़ करते हैं ना, कुछ भी बोलते हैं ना। तो उन्होंने सोचा ये ऐसे थोड़ी होगा, सृष्टि करता ब्रह्मा जी थोड़ी आएंगे हमारे गांव में, हम सब साधारण गांव के रहने वाले लोग हैं, तो चतुर्मुख चार सर वाले आदमी हो सकते हैं क्या, नहीं वो कैसे आएंगे इधर, ये सब बच्चे लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं। परंतु कृष्ण को अच्छा नहीं लगता था ये सब, वो अपने नाचते खेलते अपने ग्वाल बालों के साथ कुश्ती करते कभी कुछ खेलते, जो वहां मेंढक होते थे जो पक्षी होते थे उनकी नकल करते थे कूदते थे नाचते थे, इसमें उनको आनंद आता था। तो भगवान को ऐसे लीला करने में अधिक आनंद आता है और भगवान बैठ के बनने में आनंद नहीं आता उतना, इसलिए वो वृंदावन में रहते हैं जहां पे लीलाओं का आनंद है असीमित अपार। जब वसुदेव और देवकी ने श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का दर्शन किया तो उनका वात्सल्य भाव बहुत कमजोर हो गया, अरे ये भगवान है। परंतु यशोदा माता और नंद महाराज के मन में कभी ऐसे विचार नहीं आया, वो सदैव सोचते थे कि ये हमारा लाडला बेटा ही है, हमारा बच्चा ही है। वृंदावन में भी भगवान कृष्ण ने ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया, कोई उदाहरण दे सकते हैं आप कि कैसे भगवान कृष्ण ने वृंदावन में अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया? हाँ क्या किया? हाँ यशोदा माता को उन्होंने अपने मुंह में ब्रह्मांड दिखाया और क्या गोवर्धन पर्वत धारण किया। तो ऐसे सब देखने के बाद में भी माता यशोदा और नंद महाराज को संशय नहीं हुआ, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये मेरा पुत्र नहीं है, ये मेरा पुत्र ही है, परंतु भगवान नारायण की कृपा से ऐसे हो रहा है, हमने भगवान नारायण की भक्ति की इसलिए भगवान नारायण की कृपा हो रही है। तो इस प्रकार से उनके मन में कभी भी संशय नहीं हुआ, इसलिए प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में कह रहे हैं कि माता यशोदा और नंद महाराज को हमें वसुदेव और देवकी से श्रेष्ठ मानना चाहिए, क्योंकि सदैव वृंदावन में वो ऐसे वात्सल्य भाव की लीला में रहते हैं। कभी कभी भगवान कृष्ण डर जाते हैं अपने माता से, वैसे भगवान का जब ऐश्वर्य होता है तो सभी लोग भगवान से डरते हैं, भीषास्माद् वातः पवते भीषो देति सूर्यः भीषास्माद् अग्निश्चंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। शास्त्रों में ऐसे बताया जाता है कि सब लोग भगवान से डरते हैं, कौन कौन डरते हैं, भीषास्माद् वातः पवते, जो पवन है वायु है भगवान की डर से बहता है, अग्नि चंद्र सूर्य सब भगवान से डर के अपने अपने कर्तव्यों को करते हैं, यहां तक कि मूर्तिमान मृत्यु भी भगवान के डर से सबके सबका पीछा करती है। तो भगवान से सभी लोग डरते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि मंदिर में भगवान के सामने आके लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, उठ बैठक करते हैं, करते हैं ना, क्यों करते हैं, डरते हैं भगवान, डरते हैं क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए। तो ये डर है, सब लोग भगवान से डरते हैं, परंतु वृंदावन में कोई भगवान से डरता नहीं है, बल्कि भगवान अपने भक्तों से डरते हैं। माता यशोदा छड़ी लेके आती है, कृष्णा क्या किया तुमने, माखन चोरी किया? नहीं 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 नहीं, मैंने चोरी नहीं की। फिर माता यशोदा कृष्ण को बांध देती है और भगवान की आंखों में आंसू आ जाते हैं डर के मारे। तो ये है लीला, ये है वृंदावन की महिमा। तो ऐसे अभी गोविंदाय, नंद गोप कुमार आय गोविंदाय नमो नमः। तो कुंती महारानी जानती है कि ये माखन चोरी करने वाले, गाय को चराने वाले, यशोदा माता के पुत्र, ये वास्तव में परम सत्य है। तो इस स्मरण में माता यशोदा आनंद ले रही है। तो किस प्रकार से कृष्ण का भाव है, इसमें अंत में एक छोटी सी कहानी बताकर फिर मैं प्रवचन समाप्त करता हूं। एक बार एक चोर था, तो वो जा रहा था, तो उसने देखा कि वहां एक सत्संग में कोई चल रहा है, मंदिर में बहुत सारे भक्त बैठे हैं और एक साधु कुछ प्रवचन दे रहे हैं। तो सोचा कि बहुत सारे लोग दिखते हैं, यहां पे भी कोई मेरा ग्राहक मिल जाएगा, किसी से तो चोरी कर सकता हूं। तो देखता हूं मंदिर में बैठे बैठे कौन लोग हैं जिनसे मैं चोरी कर सकता हूं। तो वो आ गए मंदिर में और उनको प्रवचन में कोई रुचि नहीं थी, वो केवल देख रहे थे कौन बैठा है, किसके पास कुछ चोरी करने लायक वस्तु है, यही देख रहा था। परंतु जब बैठे हैं तो कान में कुछ तो जाएगा ना। तो जो प्रवचन दे रहे थे साधु, वो भगवान कृष्ण का वर्णन कर रहे थे और बाल भगवान कृष्ण के शरीर, दिव्य शरीर के ऊपर कितने आभूषण है उनका वर्णन कर रहे थे। उनका जो किरीट है रत्नों से सुशोभित, सोने का किरीट, और उनके जो कंकन है सोने के और मोतियों की माला है, ऐसे सब वर्णन कर रहे थे। तो उस समय चोर के मुंह में पानी आ गया, अरे ये तो सब यहां छोटे मोटे लोग बैठे हैं, लेकिन जिनका वर्णन ये कर रहे हैं, इसके पास इतने आभूषण है, इसके पास जाकर मैंने चोरी की तो जीवन भर आराम करके मैं रह सकता हूं और चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उसने क्या किया, ध्यान से सुना कि किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं ये, जो इतना धनी है, जिसके पास इतने सारे आभूषण है। तो बहुत ध्यान से सुना, जितने ध्यान से भक्त लोग भी नहीं सुन रहे थे ना, उससे अधिक ध्यान से चोर ने सुनना शुरू कर दिया और फिर सारा वर्णन किया, कृष्ण दिखने में कैसे हैं, उनके आंखें जो हैं खिले हुए कमलों की पत्रों की तरह हैं, उनके घुंघराले काले बाल कैसे हैं, उनके दांत मोतियों के समान कैसे हैं, उनका अधर कैसा है, उनके कर कमल कैसे हैं। तो वो ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि जिसके पास हम चोरी करने जाएंगे वो कौन है समझना चाहिए ना, रॉन्ग नंबर नहीं होना चाहिए। तो फिर ध्यान से सुन रहे थे कि कृष्ण, अच्छा उनका नाम कृष्ण है, कहाँ रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं, तो कृष्ण कृष्ण वृंदावन वृंदावन, ठीक है। और क्या है, उनकी आंखें ऐसी हैं, बाल ऐसे हैं, गाल ऐसे हैं, दांत ऐसे हैं। पूरे ध्यान से सुन लिया उन्होंने, क्यों, वो भूलना नहीं चाहते थे, वृंदावन जाके फिर भूल जाएं कि कैसे दिखते हैं, फिर कैसे समझ में आएगा। तो इतने ध्यान से सुन लिया, जो भी वो प्रवचन करने वाले बोल रहे थे सब सुन के याद रख लिया और तुरंत निकल गए। और रास्ते में चलते चलते पूछा कि वृंदावन किधर है, तो किसी ने बताया वृंदावन उस तरफ। यह सच्ची घटना है जो मैं आपको वर्णन करने जा रहा हूं, एक सच्ची घटना है। फिर वो चलते गए पूछ पूछ के कि वृंदावन कहाँ है, वृंदावन कहाँ है। और लंबी यात्रा थी और उस समय तो रेलगाड़ी नहीं थी, अन्य गाड़ी नहीं थी, चलते चलते गए वो और अंततः वृंदावन तक पहुंचे। परंतु इतने दिनों की यात्रा में 24 घंटे वो भगवान कृष्ण को भूले नहीं। क्यों, किनसे चोरी करनी है मालूम होना चाहिए। तो जो वो साधु ने प्रवचन किया था कृष्ण के बारे में, वही वर्णन इसके बारे में स्मरण करते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे, कृष्ण के बाल ऐसे हैं, कृष्ण की आंखें ऐसे हैं, उनकी मोतियों की माला ऐसी है। तो सोचते सोचते जब तक वो पहुंचे वहां तक, पूरी तरह से शुद्ध भक्त बन गए थे। और वहां जैसे ही पहुंचे, वहां कृष्ण सामने दिखाई पड़े। अरे यही है वो कृष्ण, यही है वो कृष्ण, अरे आओ आओ मेरे पास आओ बच्चा। तो कृष्ण आए, मेरे को ये कंकण दे दो। नहीं 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 नहीं, मेरी माता मुझे डांटेगी, वो पूछेगी तुम्हारा कंकण कहाँ है, मैं क्या बोलूंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे दे दो, मैं तुमको मिठाई दूंगा, दे दो मुझे, दे दो ये मोती की माला मुझे दे दो। नहीं नहीं नहीं, मेरी माता मेरे को डांटेगी, तो माता से बहुत डरता हूं मैं। नहीं नहीं नहीं, तो अंततः ऐसे दोनों के बीच में खींचाताने चल रही थी, मुझे दे दो, नहीं नहीं नहीं, दे दो, नहीं नहीं। ऐसे करते करते वो चोर के मन में इतना प्रेम हुआ कृष्ण के प्रति, खीर वो चोरी करने के लिए मांग नहीं रहा था अभी कृष्ण से, अब इतना प्रेम हो गया कि कृष्ण के इस बर्ताव से उसका हृदय पिघल गया था, और वो ऐसे ही दिव्य आनंद लेना चाहता था कृष्ण भगवान के इस तरह के बोलचाल से। और फिर वो वही वृंदावन में रह गया, कृष्ण फिर अदृश्य हो गए, और वो फिर वही वृंदावन में रहा, और वही सब कुछ छोड़कर वृंदावन में रह के वो शुद्ध भक्त बन गया। ये सच्ची घटना है एक डाकू के बारे में जो उत्तर भारत में रहता था, और फिर वो वृंदावन चला गया। तो वहां जाके कृष्ण का जो सौंदर्य है, कृष्ण के जो गुण हैं, कृष्ण की जो लीलाएं हैं, उसने इस चोर को इतना आकर्षित कर लिया कि फिर वो शुद्ध भक्त बन गया। इस प्रकार से हमें भी अपने मन में, नहीं चोरी नहीं, लेकिन मन में भगवान कृष्ण का स्मरण ऐसे करना चाहिए, श्रवण भी ऐसे करना चाहिए। कैसे? जैसे वो वृंदावन में है वैसे। केवल सृष्टि कर्ता भगवान कृष्ण नहीं, गाय चराने वाले गोविंदाय, नंद गोप कुमाराय, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। ये हमारी जीवन की सफलता होगी। तो जब प्रभुपाद जी जुहू मंदिर में बंबई में आए थे, तो उस समय ऐसे ही एक चोर आया था उधर। उसने सोचा विदेशी लोग बहुत है, तो उन्होंने अंदर आके देखा कि सब घड़ी वड़ी है सबके और सब है, तो इनसे चोरी करूंगा। तो आग ये भी सत्य घटना है, और वो बैठे वहां और इधर उधर देख रहे थे कि कौन है ये जिनके पास घड़ी है, क्या है। फिर प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे, प्रभुपाद जी के प्रवचनों को सुनकर इतने प्रभावित हुए कि चोरी करना भूल गए। फिर प्रवचन समाप्त होने के बाद प्रभुपाद के पास गए, स्वामी जी मैं आपसे बताना चाहता हूं, मैं चोर हूं, मैं यहां पे चोरी करने के लिए आया, परंतु आपका प्रवचन सुना तो मैंने सोचा कि मैं बहुत गलत काम कर रहा हूं, तो इसलिए मैं ये सब छोड़ना चाहता हूं, मैं आपके शरण में आना चाहता हूं, आप मुझे आश्रम में ले लीजिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है आ जाओ आश्रम में। वो आ गए, और आज भी है बंबई में, आज भी है। प्रभुपाद जी ने उनको दीक्षा दी, प्रभुपाद जी के शिष्य बने वो, और आज भी वो भक्त है इतने सालों के बाद। और स्वयं बताते हैं कि मैं चोरी करने आया था, लेकिन प्रभुपाद जी ने मेरा दिल ही चोरी कर लिया, मेरा हृदय चोरी कर लिया। तो इस तरह से अभी अंत में आपको एक चेतावनी देता हूं, वार्निंग। कन्नड़ में वार्निंग को क्या बोलते हैं? एच्चरिके। हाँ, कृष्ण भक्ति करना बहुत खतरनाक है, डेंजरस। क्यों? क्योंकि भगवान आपका हृदय चोरी कर लेंगे, सावधान। लेकिन अभी तक बहुत देर हो चुका है, अभी आपके लिए अभी कोई उपाय नहीं है। अभी जो हो गया सो हो गया, बस अभी भगवान कृष्ण के लिए आपका हृदय पूरी तरह से समर्पित कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। आई तो जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मय की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। हम धन्यवाद देंगे परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज को 3 बार जोर से हरि बोल कहकर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। दोपहर 1 बजे करेक्ट परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज प्रवचन करेंगे, तो सभी भक्तों से निवेदन है कि दोपहर में आइए। अभी सभी के लिए प्रसाद है, कृपया प्रसाद लेके जाइएगा। हरे कृष्णा।